ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा की बैठक में अगले आर्थिक वर्ष के बजट पर सांसदों की बहस हुई पूरी। कल की बैठक में अर्थमंत्री डॉ प्रकाश शरण महत देंगे जवाब। विश्वविद्यालयी शिक्षा अनुसंधान और नव प्रवर्तन पर केंद्रित होनी चाहिए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का कथन। भारतीय राज्य उत्तराखंड के चक्करपुर में हुए सड़क हादसे में 4 नेपाली नागरिकों की गई जान। और पाकिस्तान में कल भारी बारिश और आंधी की वजह से कम 28 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा में आर्थिक वर्ष 2080-81 के बजट पर सांसदों की बहस आज पूरी हुई है। प्रतिनिधि सभा में बजट के ऊपर बहस के दौरान उठे सवालों के जवाब देते हुए अर्थमंत्री डॉ प्रकाश शरण महत कल जवाब देंगे। बजट पर बहस के दौरान सांसदों ने मौजूदा आर्थिक समस्याओं के दीर्घकालीन समाधान ढूंढने और वितरणमुखी कार्यक्रमों को निरुत्साहित करने का सुझाव दिया। बहस के दौरान सत्तापक्षीय सांसदों ने बजट को सकारात्मक बताते हुए बजट के लक्ष्य को परिणाममुखी बनाने की बात पर जोर दिया था। वहीं प्रतिपक्षी सांसदों ने बजट को सरकार की नीति तथा कार्यक्रम के सिद्धांत और प्राथमिकताओं के परे बताते हुए सुधार करने की राय प्रस्तुत की थी। साथ ही विभिन्न सांसदों ने बजट में मौजूद कर प्रणाली को न्याय की दृष्टि से अनुचित बताते हुए इसकी आलोचना की थी। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत की राष्ट्रीय सरोकार तथा सुनवाई समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के संदर्भ में विज्ञों के साथ विचार विमर्श किया। समिति की आज संसद सचिवालय सिंह दरबार में हुई बैठक में पूर्व रक्षा सचिव खेमराज रेग्मी ने कहा कि नेपाल के प्रशासन संयंत्र के कमजोर होने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है। वहीं पूर्व सचिव एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञ वामन प्रसाद न्यौपाने ने पिछले समय में बढ़ते राजनीतिक अपराध का जिक्र करते हुए अपराध न्यूनीकरण के लिए पड़ोसी देशों के साथ समन्वय करने की बात पर जोर दिया। इसी तरह सुरक्षा विज्ञ केसर बहादुर भंडारी पूर्व एआईजी राजेंद्र बहादुर सिंह लगायत ने अपनी अपनी राय दी थी। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि विश्वविद्यालय की शिक्षा अनुसंधान और नव प्रवर्तन पर केंद्रित होना चाहिए। आज धूलीखेल में आयोजित काठमांडू विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम में अनुसंधान और नव प्रवर्तन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और स्नातक स्तर में अधिक अभ्यासमुखी शिक्षण समाविष्ट होना चाहिए। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि कला और संस्कृति के संरक्षण पर जोर देने की जरूरत है। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा बबरमहल स्थित नेपाल कला परिषद में जारी राष्ट्रीय ललित कला प्रदर्शनी का आज अवलोकन करने के दौरान अध्यक्ष ओली ने कहा कि प्राचीन कला और संस्कृति के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को भी इतिहास समझने में आसानी हो। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने विक्रम संवत 2069 के प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव में अंतर्घात करने वाले नेता तथा कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई करने का निर्णय किया है। पार्टी की कार्यकारिणी समिति की बैठक ने चुनाव में अंतर्घात करने वाले नेता तथा कार्यकर्ताओं के ऊपर विधान अनुसार कार्रवाई करने का निर्णय किया। ये जानकारी पार्टी के केंद्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बसनीत ने दी। केंद्रीय प्रचार विभाग के प्रमुख बसनीत ने कहा कि चुनाव में अंतर्घात करने वालों को पार्टी के सदस्य पद से भी हटाया जाएगा। पार्टी कार्यकारिणी सदस्य शिवलाल थापा के संयोजकत्व में गठित कार्यदल ने फागुन 20 गते पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव को एक रिपोर्ट सौंपी थी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। उप प्रधान एवं गृहमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने शिक्षा को समाज की नींव बताते हुए कहा कि समृद्धि और विकास के लिए सक्षम शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। आज से काठमांडू में शुरू हुए दक्षिण एशियाई शिक्षकों के दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि वे गरीब और वंचित समुदायों के बच्चों को शिक्षा के मुख्यधार में लाने के लिए बाल विकास कक्षाओं के संचालन और सीमांतकृत समुदाय की महिलाओं और विकलांग छात्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित न करने की ओर ध्यान दे रहे हैं। उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि शिक्षा में पर्याप्त निवेश के अभाव के बावजूद सरकार दीर्घकालीन विकास के लक्ष्य के अनुसार सभी के लिए स्तरीय समान और आजीवन शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुधार की पहल कर रही है। सम्मेलन में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मंत्री प्रमिला कुमारी ने कहा कि सरकार सभी के लिए स्तरीय शिक्षा और शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन में नेपाल, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश के एजुकेशन इंटरनेशनल के प्रतिनिधि अपने अपने देश की रिपोर्ट पेश करेंगे और एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्राथमिकताओं, दक्षिण एशियाई शिक्षा में निजीकरण, शिक्षा में ट्रेड यूनियन के भविष्य लगात विषय पर समूहगत विचार विमर्श होगा। ये जानकारी आयोजक संस्था ने दी। नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह ने कहा है कि पार्टी विधि के मुताबिक नहीं चल रही है। आज काठमांडू में नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बागमती प्रदेश के दूसरे अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के विधि अनुसार न चलने के कारण भातृ संगठन और सुवेक्षुक संस्थाएं जर्जर हो चुकी हैं। नेता सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस को ट्रेड यूनियन के मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने आगामी श्रावण एक गति से स्वचालित प्रणाली के माध्यम से पूर्व और अंतिम श्रम स्वीकृति देने का निर्णय किया है। मैन पावर कंपनी द्वारा अपनी ही कंपनी में वैदेशिक रोजगारी के लिए विदेश जाने वाले श्रमिकों की सूचना ऑनलाइन रखने और सूचना रखने के बाद स्वतः श्रम स्वीकृति देने की व्यवस्था करने का निर्णय मंत्रालय ने किया है। ये जानकारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के सचिव एक नारायण अर्याल ने दी। भारत के उत्तराखंड स्थित चक्करपुर में हुए सड़क हादसे में चार नेपालियों की मौत हो गई। कल कार और दो स्कूटर के टकराने से हुए हादसे में चार नेपालियों की मौत हो गई। इस बात का उल्लेख भारतीय संचार माध्यम में किया गया है। हादसे में कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नंबर 2 उल्टा खाम के 60 वर्षीय नेम बहादुर चंद, उनकी पत्नी 56 वर्षीय सरस्वती, बहु 27 वर्षीय नर्मदा और चंद के भाई की पत्नी 42 वर्षीय कल्पना की मौत हो गई है। सीविन नेपाल ने बताया है कि उसने अब तक 25,000 से अधिक समस्याग्रस्त बच्चों को बचाया है। सीविन नेपाल द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की स्थापना 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में सीविन नेपाल की कार्यकारी निदेशक सुमिनिमा तुलाधर ने कहा कि 25 साल की अवधि में 6 लाख से अधिक बच्चों ने हेल्पलाइन से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2072 में जब भूकंप आया था तब सबसे ज्यादा 1 लाख बच्चों ने हेल्पलाइन से संपर्क कर अपनी समस्याएं बताई थी। चाइल्ड हेल्पलाइन के कार्यक्रम के संयोजक सागर भंडारी ने बताया कि बाल श्रम, बाल विवाह, यौन शोषण और दुर्व्यवहार, लावारिस बच्चों, द्वंद्व प्रभावित बच्चों और मानव तस्करी के शिकार हुए बच्चों का सीविन नेपाल ने उद्धार किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के खैबर पख्तून, ख्वावा और पंजाब प्रांत के कई हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश और आंधी की वजह से 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि 140 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक केपी के बन्नू, डेरा इस्माइल खान, करक और लक्की मरवत में बारिश से संबंधित घटनाओं में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 145 लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी एएनआई ने जियो न्यूज के हवाले से बताया कि बारिश की वजह से कम 69 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। भारी बारिश की वजह से हुए नुकसान को देखते हुए लक्की मरवत, बन्नू और प्रांत के अन्य हिस्सों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा की बैठक में अगले आर्थिक वर्ष के बजट पर सांसदों की बहस हुई पूरी। कल की बैठक में अर्थमंत्री डॉ प्रकाश शरण महत देंगे जवाब। विश्वविद्यालय को शिक्षा अनुसंधान और नव प्रवर्तन पर केंद्रित होनी चाहिए, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड का कथन। भारतीय राज्य उत्तराखंड के चक्करपुर में हुए सड़क हादसे में 4 नेपाली नागरिकों की गई जान। और पाकिस्तान में कल भारी बारिश और आंधी की वजह से कम 28 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।